एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हे देश देश के कुल के लोगों, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभमान होकर यहोवा की आराधना करो।
आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए। क्योंकि यहोवा महानीश्वर है,
सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए प्रजा उसके हाथ की भेड़े हैं,
क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर पिता, और हमें तेरा रास्ता में चला। विशेषकर मेरे श्रोताओं को तेरे वचन से बहुत आयत से आशीष दे, और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे आत्मा के सामर्थ के साथ बोल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है मसीह की देह में एकता। कलीसिया एक देह है जिसमें कई सदस्य होते हैं, जिन्हें हर जाति, कुल, भाषा और लोगों से बुलाया जाता है। मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, जाति, संस्कृति, विद्या और राष्ट्रीयता का भेद और ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के भेद हमारे बीच विभाजनकारी नहीं होने चाहिए। हम सब मसीह में समान हैं, जिसने एक आत्मा के द्वारा हमें अपने साथ और एक दूसरे के साथ एक संगति में बांधा है। हमें बिना किसी पक्षपात या आरक्षण के सेवा करनी है और सेवा लेनी है। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के प्रकाशन के माध्यम से हम एक ही विश्वास और आशा को साझा करते हैं और एक साक्षी के रूप में सब तक पहुंचते हैं। इस एकता का स्रोत त्रिएक परमेश्वर की एकता में है, जिसने हमें अपनी संतान के रूप में अपनाया है। इसे हम बाइबल में रोमियो 12 का 4 और 5, पहला कुरंतियों 12 का 12 से 14, मती 28, 19, 20, भजन संहिता 133 का 1-2 और दूसरा कुरंतियों 5 का 16-17, प्रेरितों के काम 17 का 26 और 27, गलातियों 3 का 27 और 29, कुलुसियों 3 का 10 से 15, इफिसियों 4 का 14 से 16 और 4 का 1 से 6 तथा यूहन्ना 17 का 20 से 23 में पाते हैं। आइए हम इसे विस्तार से सीखें। यीशु पृथ्वी पर अपना कार्य समाप्त करने के बाद यूहन्ना 17:4 के अनुसार अपनी मृत्यु से पहले की शाम को भी अपने शिष्यों की हालत के लिए चिंतित था। ईसा के कारण इस बात पर बहस हुई कि कौन सबसे बड़ा था और किसे मसीह के राज्य में सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। यीशु का यह स्पष्टीकरण कि नम्रता उसके राज्य का सार थी और उसके सच्चे अनुयायी सेवक होंगे जो स्वेच्छा से बदले में धन्यवाद की कोई अपेक्षा न रखते हुए स्वयं को दे देंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहरे कानों पर पड़ा। लूका 17:10। यहाँ तक कि उसने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह उनके पैरों को धोने के लिए झुक गया, जबकि उनमें से कोई भी उसके मतलब के कारण ऐसा नहीं करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यर्थ है। यीशु प्रेम है, यह उसकी सहानुभूति थी जिसके कारण लोग उसका अनुसरण करते थे। इस निस्वार्थ प्रेम को ना समझते हुए उसके शिष्य गैर यहूदियों, महिलाओं, पापियों और गरीबों के प्रति मजबूत पक्षपात से भरे हुए थे, जिसने उन्हें इन घृणित लोगों के प्रति मसीह के व्यापक प्रेम के लिए अंधा कर दिया था। जब शिष्यों ने उसे एक बदनाम सामरी महिला के साथ बातचीत करते हुए पाया तो उन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा था कि कटाई के लिए पके हुए खेतों में सभी किस्मों के अनाज शामिल होते हैं जो कटाई के लिए तैयार हैं। लेकिन मसीह को परंपरा, जनमत या यहाँ तक कि पारिवारिक नियंत्रण से भी प्रभावित नहीं किया जा सकता था। उसका अदम्य प्रेम नीचे तक पहुँचा और टूटी हुई मानवता को बहाल किया। ऐसा प्रेम जो उन्हें लापरवाह लोगों से अलग करेगा, सच्चे शिष्य होने का प्रमाण होगा। जैसा वह प्रेम करता था वैसा ही उन्हें प्रेम करना था। दुनिया हमेशा मसीहों को अलग देख सकेगी, उनकी घोषणा के कारण नहीं बल्कि उनमें मसीह के प्रेम के प्रकटन के कारण। यह हम पा सकते हैं यूहन्ना 13:34-35 में। इसलिए गतसमनी की वाटिका में भी मसीह के मन में मुख्य बात उसकी कलीसिया की एकता थी। वे जो संसार से बाहर आए थे यूहन्ना 17:6, उसने अपने पिता से कलीसिया में एकता के लिए प्रार्थना की, जैसा कि परमेश्वरत्व में प्रतीत होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी उसके अनुयायी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। यूहन्ना 17:21। ऐसी एकता कलीसिया का सबसे शक्तिशाली साक्षी उपकरण है, क्योंकि यह मानवता के लिए मसीह के निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण देता है। उसने कहा, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यूहन्ना 17:23। आज दृश्यमान कलीसिया के लिए मसीह के मन में किस प्रकार की एकता थी? ऐसा प्रेम और एकता कैसे संभव है? इसकी नींव क्या है? इसके घटक क्या हैं? क्या यह एकरूपता की मांग करती है या विविधता की अनुमति देती है? एकता कैसे काम करती है? आइए हम इसके बारे में पढ़ें और सीखें। आत्मा की एकता। कलीसिया की एकता के पीछे पवित्र आत्मा की गतिशील शक्ति है। उसके द्वारा सभी विश्वासियों को कलीसिया में ले जाया जाता है। उसके द्वारा सब ने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, 1 कुरिन्थियों 12:13। इन बपतिस्मा प्राप्त सदस्यों में एक एकता होनी चाहिए, इसे पौलुस ने आत्मा की एकता के रूप में वर्णित किया है, इफिसियों 4:3। प्रेरित ने आत्मा की एकता के बुनियादी घटकों को सूचीबद्ध किया। एक ही देह है और एक ही आत्मा, उसने कहा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है, इफिसियों 4:4-6। एक शब्द का 7 गुना दोहराव उस संपूर्ण एकता पर जोर देता है जिसकी पौलुस ने कल्पना की थी। उन्हें हर राष्ट्रीयता और जाति से बुलाकर पवित्र आत्मा लोगों को एक देह में बपतिस्मा देता है, मसीह की देह कलीसिया। जैसे जैसे वे मसीह में बढ़ते हैं, सांस्कृतिक भेदभाव अब विभाजनकारी नहीं रहते हैं। पवित्र आत्मा ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के बीच की बाधाओं को तोड़ देता है, यह महसूस करते हुए कि परमेश्वर की दृष्टि में वे सभी समान हैं, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यह एकता समुदाय स्तर पर भी काम करती है। इसका अर्थ है कि स्थानीय कलीसियाएं हर जगह एक समान हैं, भले ही कुछ दूसरे देशों से पैसे और विदेशी प्रचारक प्राप्त करते हों। ऐसा आध्यात्मिक मिलन कोई पदानुक्रम नहीं जानता है। परमेश्वर के समक्ष देशी नागरिक और विदेशी प्रचारक एक समान हैं। संयुक्त कलीसिया के पास एक आशा है, उद्धार की धन्य आशा, जो हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमामय प्रकट होने पर पूरी की जाएगी, तीतुस 2:13। यह आशा शांति और आनंद का स्रोत है और एकजुट साक्षी के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान करती है, मती 24:14। यह परिवर्तन की ओर ले जाता है, क्योंकि जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, 1 यूहन्ना 3:3। एक समान विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान में व्यक्तिगत विश्वास से सभी देह का एक हिस्सा बन जाते हैं। एक बपतिस्मा जो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है, रोमियो 6:3-6 में हम यह पाते हैं, इस विश्वास को पूरी तरह से व्यक्त करता है, मसीह की देह के साथ एकता की गवाही देता है। अंत में पवित्र शास्त्र सिखाता है कि एक आत्मा, एक प्रभु और एक परमेश्वर और पिता है। कलीसिया की एकता के सभी पहलू त्रिएक परमेश्वर की एकता में अपनी नींव पाते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, 1 कुरिन्थियों 12:4-6। एकता का प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, आइए हम इसे देखते हैं। विश्वासी मन और मत की एकता का अनुभव करते हैं। निम्नलिखित उपदेशों पर ध्यान दे, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो, रोमियो 15:5-6। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, 1 कुरिन्थियों 1:10। आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, 2 कुरिन्थियों 13:11। परमेश्वर कि कलीसिया को फिर भावना, विचार और कार्य की एकता को प्रकट करना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि सदस्यों की भावनाएं, विचार और कार्य समान होने चाहिए? क्या बाइबल की एकता का अर्थ एक रूपता है? नहीं, हम पाते हैं बाइबल में कि विविधता में एकता है। बाइबल की एकता का अर्थ एक रूपता नहीं है। मानव देह का बाइबल रूपक दर्शाता है कि कलीसिया की एकता विविधता में मौजूद होती है। देह में कई अंग होते हैं जो सभी देह के इष्टतम प्रदर्शन में योगदान करते हैं। प्रत्येक एक महत्वपूर्ण हालांकि अलग कार्य को पूरा करता है। कोई भी बेकार नहीं है। यही सिद्धांत कलीसिया में भी काम करता है। परमेश्वर अपने उपहारों को जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, 1 कुरिन्थियों 12:11, जिससे एक स्वस्थ विविधता पैदा होती है जो कलीसिया को लाभ पहुंचाती है। सभी सदस्य एक जैसे नहीं सोचते हैं, ना ही वे एक ही कार्य करने के लिए योग्य हैं। सभी मगर एक ही आत्मा के निर्देशन में कार्य करते हैं, अपनी परमेश्वर प्रदत्त क्षमताओं के अनुसार कलीसिया का निर्माण करते हैं। अपने विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कलीसिया को सभी उपहारों के योगदान की आवश्यकता है। एक साथ वे पूर्ण सुसमाचार प्रचार को शक्ति प्रदान करते हैं। कलीसिया की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि प्रत्येक सदस्य एक जैसा है और हर दूसरे सदस्य के समान कार्य करता है, बल्कि यह सभी सदस्यों पर निर्भर करता है जो परमेश्वर द्वारा सौंपे गए अपने कार्यों को करते हैं। प्रकृति में दाखलता अपनी डालियों के साथ अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यीशु ने स्वयं के साथ विश्वासी के मिलन को दर्शाने के लिए दाखलता के रूपक का उपयोग किया। यह हम पाते हैं यूहन्ना 15:1-6 में। डालियां विश्वासी सच्ची दाखलता मसीह का विस्तार हैं। हर डाली और पत्ते की तरह प्रत्येक मसीह दूसरों से भिन्न है, फिर भी एकता मौजूद है, क्योंकि सभी एक ही स्रोत दाखलता से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दाखलता की डालियां अलग अलग होती हैं और एक दूसरे में उनका मिलना नहीं होता है, तो भी प्रत्येक डाली दूसरों के साथ संगति में रहेगी यदि वे एक ही मूल तने से जुड़ी रहें। वे सभी एक ही स्रोत से पोषण प्राप्त करते हैं, एक ही जीवन देने वाले गुणों को आत्मसात करते हैं। इसलिए मसीह एकता सदस्यों को मसीह में कलमबद्ध करने पर निर्भर करती है। उससे वह शक्ति आती है जो मसीही जीवन को जीवंत करती है। वह कलीसिया के कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रतिभा और शक्ति का स्रोत है। उससे जुड़ा होना सभी मसीहों की रुचि, आदतों और जीवन शैली को आकार देता है। उसके माध्यम से सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक साझा विशेष कार्य में शामिल होते हैं। जैसे जैसे सदस्य उसमें बने रहते हैं, स्वार्थ दूर हो जाता है और मसीही एकता स्थापित हो जाती है, जिससे वे अपने विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए जबकि कलीसिया में अलग अलग स्वभाव हैं, सभी एक ही मुखिया के अधीन कार्य करते हैं। जबकि कई उपहार हैं पर एक आत्मा है, हालांकि उपहार अलग अलग हैं लेकिन सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं। परमेश्वर एक ही है और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, 1 कुरिन्थियों 12:6। और विश्वास में एकता है। हालांकि उपहारों की विविधता का मतलब विश्वास की विविधता नहीं है। अंत के दिनों में परमेश्वर की कलीसिया ऐसे लोगों से बनी होगी जो अनंत सुसमाचार का एक मंच साझा करते हैं। उनके जीवन की विशेषता परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना और यीशु का विश्वास है। प्रकाशित वाक्य 14:12। साथ में वे दुनिया को उद्धार के लिए परमेश्वर के निमंत्रण की घोषणा करते हैं। तो आइए हम उस सच्चे कलीसिया के मंच को साझा करें जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु का विश्वास रखते हैं, और हम अच्छा जीवन जी करके, अच्छा नमूना दिखा करके दूसरे लोगों को भी यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता आने के लिए तैयार करें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। हम अपने आप को तेरे सामने नतमस्तक होते हैं पिता। हम तुझे अपना परमेश्वर और सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं। हमें तू बुलाया है, हमें तू अपने झुंड में रख, अपने सच्चे कलीसिया का भाग बनाकर रख पिता, और हमें तेरे सच्चे रास्ता में ले चल। मैं तेरे पवित्र आत्मा से अगुवाई कर पिता। मेरे हरेक श्रोताओं को तू आशीष दे, जैसे वे तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन को मानने वाले हम सबों को तेरा राज्य के नाम से मानता हूँ। सुना ग्रंथ है, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।